सबसे पहले आयत नंबर 254 मोहलत से फ़ायदा उठा लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीह वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ा वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है इसमें से इस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें ना अमाल का सौदा हो और ना दोस्ती और न सिफारिश हो सके, और काफ कुफर करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह अकबर, क्या दावत है। आप सोचिए कि इंसान की सारी खुशफहमी ख़त्म होती हैं, टालता ही रहता है, सोचता है अच्छा करूँगा, फिर दिल पे हाथ पड़ता है, फिर शैतान फ़कीरी का खौफ दिलाता है, और एक वक्त आता है कि बहुत लंबी चौड़ी जायदाद छोड़ कर दुनिया से चला जाता है, और सगे खून के रिश्तों को आपस में झगड़ने और मुगालतों में पड़ने पर छोड़ जाता है, इससे पहले कि ये वक्त आए कि तुम्हारा कबूल न किया जाए। आज खर्च कर दो। अमूमन इंसान कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरत में लेन देन कर लूँगा, कोई दोस्त काम आ जाएगा, कोई मेरी सिफारिश कर देगा। तो कहा नहीं, मोहलत अमल किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। क्यों नेकियों के मामले में पोस्टपोन नेकियों का तुम्हारा नज़रिया है, और आखिरत की तैयारी ना करना अमली एतबार से काफिराना रविश है। जो इंसान आखिरत के बारे में जानता भी हो, मानता भी हो, लेकिन उसका अमल ना बदले, उसकी नेकियों की तरफ भाग दौड़ ना बढ़े फस्तबिकुल खैरात की सूरत में, और गुनाहों को देखकर वो हैंड ब्रेक ना लगाए, तो मान लीजिए फिर उससे बड़ा आखरत का मुनकर कोई नहीं। आप नोट कर लीजिए, यहाँ ऐसे लोगों के लिए काफिर का लफ्ज़ आया। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को रोकते हैं। फिर झूठी सहारों की, यानी झूठ सहारों की नफ़ी। बहुत सारे झूठे सहारे, वो करनी वाला, वो पल्लू पकड़ लेंगे उसका, वो बचाने वाला, वो मुश्किल कुशा, वो दस्तगीर, अल्लाह ताला सारी खुशफहमियाँ दूर करते हैं। और फिर अगली हिदायत आयतुल कुर्सी में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला की खूबियाँ और उसकी सिफात बयान करके इंसानों को बताया गया कि तुम्हें मुश्किल लगता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। देखिए, पिछली आयत से ही माल की बातें शुरू हो चुकी थी, तो ऐसे लगता है कि माल देने का हुक्म दिया गया, लेकिन इंसान का दिल घटता है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ अपना जलाल दिखाते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं कि तुम क्या समझते हो कि नऊज़ुबिल्लाह तुम ऐसे रब को दे रहे हो जिसको तुम्हारे माल की ज़रूरत है। ऐसा रब जिसके पास नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो अलहई है, वो अलकयूम है, उसको तो नींद नहीं आती, उसको तो ऊँग भी नहीं आती, वो तो ज़मीन और आसमान के ख़जानों का मालिक है, तुम्हारे माल की उसको क्या ज़रूरत है। कभी अल्लाह के रास्ते में कुछ दे रहे हो ना किसी को, तो इसको सोचा करें, लहू मा फिस समावाति व मा फिल। और साथ ही इसको इस तरह भी देखिए कि लहू में क्या कुछ है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ में कौन है, क्या मैं नहीं हूँ इसमें। तो फिर कहे इन्नी लिल्लाह, मैं अल्लाह की हूँ। हम सारी ज़िंदगी इस बात को भूलते रहते हैं, और जब हम मरते हैं तो लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि देखो वो तो हम सब अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, ये भी चली गई। तो ज़िंदगी में अल्लाह के बनिए, और फिर सिफारिश की उम्मीद पे गुनाह करते जाना ये ना समझी की बात है। देखिए, सिफारिश सिफारिश है, हुक्म नहीं। सिफारिश है मगर मशरूत है, और मशरूत में से शर्तें क्या हैं। नंबर एक, कुछ तो काबिलियत हो। आप 5 जमात पढ़े को किसी भी जगह सिफारिश करके प्रिंसिपल नहीं लगवा सकते कि जहाँ लोग मास्टर्स की डिग्रियाँ हासिल करने आए हों। आप किसी को सिफारिश करके किसी कंपनी का सीए नहीं लगवा सकते जिसने 4 पैसे भी ना लगाए हों उस कंपनी में, और उसका कोई इनपुट ना हो। असल बात यह है, कुछ होगी कमी, अल्लाह दूर कर देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही एक साथ सफ़र करने वालों में से एक इकॉनमी है में है और दूसरा फर्स्ट क्लास में। करते तो नहीं, लेकिन मुमकिन तो है अगर थोड़े से पैसे देकर या कुछ और ले दे के उसको अपग्रेड करवा लिया जाए। तो बात यह है कि उसी के ऊपर नज़रें रखें, और उसका इल्म बहुत बड़ा है। आप कह लीजिए कि आयतुल कुर्सी तौहीद बारी ताला का ख़जाना है, ट्रेयर है, ट्रेयर ऑफ तौहीद। फिर इसकी फजीलतें क्या हैं। हर नमाज के बाद इसको पढ़िए, अल्लाह रहमत करेगा। रात को सोते वक्त इसको पढ़ना, और सबसे बड़ी बात है कि शैतान का बस नहीं चलता, उस इंसान को कोई नुकसान नहीं वो दे सकता जो आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है। और इसी तरह फिर तौहीद के अमली तकाजे कि उस पर नज़रें लगाओ और सिर्फ उसी के होकर रह जाओ। फिर इसके बाद आयत 261, इन्फाक का अजर। दिल घटता है अल्लाह के रास्ते में देने, तो अल्लाह ने अपना मुकाम बता दिया, अब इनाम बता रहे हैं कि मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جسے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ایک فصل سامنے لا کر انسان کو شوق بھی دلایا گیا، رغبت بھی دلائی گئی کہ آج یہاں دیا ہوا ایک، کل وہاں 700، 7000، 70000، اور اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء ہے۔ تو کیوں گھبراتے ہو؟ ایک تاجر 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کرتا ہے اس امید پر کہ اس پر 10000 نفع آئے گا تو میرا مال بڑھ جائے گا۔ اس کے اس مال کے خرچ کرنے میں اور کسی کے کسی سے 1 لاکھ ادھار مانگنے میں، یا کم اور کچھ نہیں تو معافی کر دو، ڈونیٹ کر دو مجھے 1 لاکھ، دینے والے کے دل پر جو بوجھ پڑتا ہے اس کا فرق کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں تاجر کو پتا ہے کہ یہ میں دے نہیں رہا، لے رہا ہوں، دس از انویسٹمنٹ۔ تو اپنے لیے بھی ایک بات لکھ لیجئے، اللہ کے راستے میں دینا اس وقت بہت آسان ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں میں اس کو انویسٹ کر رہا ہوں، آج یہاں دوں گی کل وہاں ملے گا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے دل کھولنا پڑتا ہے۔ اس کا یقین رکھیے کہ آج یہاں جو دے رہی ہوں، آخرت کی بیلٹ پہ میرا وہ لگیج، وہ میرا مال، وہ میرا خرچ موجود ہوگا۔ اور پھر صدقہ اور قرض حسن دینا، یہ تو اور بھی خوبصورت بات ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ شرط کیا ہے کہ خلوص ہو، اور کن حالات میں دیا۔ نیکی اپنی اصل کے اعتبار سے رنگ بدلتی رہتی ہے، مشکل حالات میں کی ہوئی نیکیاں آخرت میں زیادہ اجر دیں گی، خلوص دل سے کی ہوئی نیکیاں اجر دیں گی۔ اسی طرح سے معاشرے کا ٹرینڈ کیا تھا، تمہاری شاکلہ کیا تھی، تنگ دل تھے کہ کھلے دل تھے، ہر ایک کی کیفیت فرق ہے۔ کسی کو صبح سونا مشکل لگتا ہے، کسی کو صبح جاگنا مشکل لگتا ہے، تو کیا دونوں کو فجر کا ایک ہی اجر ملے گا؟ نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ اور میں اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، اور کبھی یہ نہ کہا کرے کہ حالات بڑے برے ہیں۔ دیکھیے، حالات اور حالت دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے۔ ہماری حالت جیسی ہوتی ہے نا، ویسے ہی ہمارے حالات ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے آیت 264، اس میں ایک ہدایت چھپی ہوئی ہے کہ انفاق کیسے ضائع ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کی لگی لگائی کھیتی میں آگ لگتی دیکھی؟ کسی کی فیکٹری، کسی کے کاروبار کو نیچے آتا دیکھا؟ اسی کو سمجھیے کہ دیا تو تھا لیکن آگ لگ گئی، اور وہ کون لوگ تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ 264، یعنی دینے کے بعد احسان جتلانا، ایزا دینا، اس سے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، لوگوں کو دکھاوے کے لیے دینا۔ اور چوتھی بات، اللہ کے نام پر نہیں کرنا خرچ، یعنی آخرت میں اجر ملنے کی امید نہیں، دنیا کے لیے۔ اب دیکھیں، اسے ایک آیت میں 4 جڑی بوٹیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی فصل کو ضائع کرتی ہیں۔ یہ دیمک ہے، کبھی بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کیجیے۔ احسان جتلانا تو دور کی بات، ماسی کو دیے پیسے اور ذرا ایک چھٹی کی اگلے دن کہا دیکھا پیسے لے کے بھاگ گئی، ہے ہی نہ شکرے، ہے ہی نہ پتہ نہیں کیا کچھ، اتنے سخت لفظ لوگ بول دیتے ہیں بعض اوقات کہ زبان پہ نہ آئے۔ پھر دکھاوا، شہرت، کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر غریبوں کی عزت کو پامال کرنا، اور پھر بعد میں اسی کی وجہ سے زیادہ زیادہ کام لینا، یہ سب کچھ ہے۔ تم وہی ہو جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلے۔ تو کیا پتہ چلا کہ انفاق کی حفاظت ضروری ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی قیمتی چیزیں کھول تو نہیں آتے کہ بعد میں جو مرضی خراب کر دے۔ پھر اسی طرح احسان جتانے اور تکلیف دینے سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے بعد کبھی کسی کو جتلانے کو دل چاہے، اندر خارش ہوتی ہے، شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے ذرا کہو نا، بتاؤ نا اس کو، سب کو بتاؤ وہ کل کیا کیا تھا، وہ میں اتنی مدد نہیں کی رشتہ دار کی، ہاں ہم کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آئے 268، رحمان اور شیطان کی دعوت۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو، شیطان کہتا ہے روک لو۔ جب روک لیتے ہیں اس کے کہنے پہ، کہتا ہے دیکھو دے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، ابھی ضرورتیں کتنی ہیں، دیکھا نہیں بچے چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے، کیا کرو گے، جمع کرو۔ इनके नाम पे कोई प्लॉट ले लो, और ये वो। तो शैतान तंग दस्ती का खौफ दिलाता है, और जब बहुत सारा माल जमा होता है हमारी ज़रूरतों से ज़ायद, तो कहता है अब खुशियों पे नहीं लगाना, इन्हीं बच्चों के लिए तो जमा किया था, लो शादी के बार बार होती है, फिर देखी जाएगी। और इस तरह से फिर उस माल को फुहश में लगाता है, कभी घरों में फुहश देखने के लिए और कभी अपनी सोशल लाइफ में फुहश को लाने के लिए। इसके बरक्स अल्लाह का वादा बस दो चीज़ों का है कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सदका अल्लाह के गज़ब की आग को बुझाता है, हमारी जो कमियां बेशियां होती हैं, जो हमारे गुनाह होते हैं, उस आग को सदका जला देता है। और साथ ही साथ अल्लाह का फजल, अल्लाह तुम्हारे हक़ से ज़्यादा देगा, एक्स्ट्रा दे देगा। तो रहमान मगफरत और फजल का वादा देता है। अब हम में से हर एक को इख्तियार है, अल्लाह ताला के वादों पर यकीन कर ले या फिर शैतान के वादों पर यकीन करे। और याद रखिए कि क़्यामत के दिन शैतान तो पीछे हटेगा। आप सूरत इब्राहिम में पढ़ेंगे 13 पारे में कि वहाँ जाकर साफ मुकर जाएगा, वला फला तलूमू निलूमू अनफुसकुम, तो मुझे क्यों मलामत करते हो, खुद को मलामत करो, मैं तो एक दावत देता था, इन्नी दाऊ तुहुम, बस वो तो एक झूठा फरेबी दावा था, तुम ना मानते, तुमने अल्लाह की पुकार पे लब्बाई क्यों नहीं कहा। तो याद रखिए आज ही हर उस सोच को अपने से दूर कीजिए कि जो आपको मुझे क़्यामत के दिन रुसवा कर सके। और उसके बाद फिर आयत नंबर 278, सूदी मामला, अल्लाह और रसूल से जंग है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रूमा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिनो अल्लाह से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है इसको छोड़ दो। अमल में बदतरीन गुनाह सूदी मामला, और सूदी मामला इतना बुरा कि सूद से मुतल्लिक हर पहलू पर लानत डाली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की वजह से 4 लोगों पर लानत है, आकिलुहु व मोकिलुहु, कातिबुहु व शाहिदुहु, खाने वाला, खिलाने वाला, उसको लिखने वाला और उसकी गवाही देने वाला। तो आप इस पे ज़रा सा गौर कीजिएगा बाद में, जब अल्लाह रहमतों से दूर कर दे तो बरकत होगी, खैर होगी, नहीं होगी। जहाँ भी सूद का मामला आएगा वहाँ बेसकूनी होगी, बीमारी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और रात जाते की फटीक पड़ेंगी। लोग इसलिए सूद के मामलों में पड़ते हैं ना, ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाए, लग्जरियस लाइफ, लग्जरीज आ जाती हैं, लेकिन लाइफ खूबसूरत नहीं होती और दिल घटता है और दिल घुटता है। इसीलिए अल्लाह ताला के इस हुक्म पर गौर करना है कि सूद को छोड़ दो, अगर कोई मामला है तो छोड़ दे। आप कहते हैं मैं यकीन नहीं आता, तो अगली बात अल्लाह कहता है शुबे के मामलों को भी छोड़ दो, डाउट है ना, छोड़ दो। क्या तुम डाउट वाली चाय पी लोगे कि इसमें मक्खियाँ भी गिरी थी फिर भी निकाल दी किसी ने और आप मुझे पेश की? क्या ये खाना खा लोगे जिसमें शक है कि छिपकली गिरी थी और किसी ने निकाल ली? तो बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। शक पड़ जाएगा घर के कोने में एक सांप का बच्चा है जो कहीं से बाहर से आया या ज़मीन से निकला, क्या उस घर में आराम से रहेंगे? और जब अल्लाह से जंग होगी तो बताइए कौन जीतेगा? अल्लाह ताला आपको, मुझे और हमारी नस्लों को इससे बचा ले। फिर आयत 282, माली मामलात की अहमियत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबू, कि मोमिनो जब आपस में किसी मियाद का मुकर्रर वक्त के लिए कर्ज का मामला करने लगो तो इसको लिख लिया करो। क्या पता चला इन्फाक फी सबीलिल्लाह बेहतरीन सूरत थी, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, बदतरीन थी सूद, अब बीच का एक रास्ता दिया जा रहा है कि सूद पे क्यों चलते हो, कर्ज ले लो, और कर्ज भी कौन सा है जो बिला सूद, और बिल्कुल वो सूद अपने माल को एक्स्ट्रा को लोगों को कर्ज देने में लगाओ ताकि लोगों को बैंकों में जाकर और दूसरों से लेकर भारी किस्तों पे कर्ज ना लेने पड़े। लेकिन इसमें भी शर्त है, लिखो कब दोगे। सगा भाई और बहन भी मामला कर रहा हो ना तो लिखिए, गवाह मुकर्रर कीजिए, इसलिए कि लिखी हुई बात गवाह होती है। बाद में छोटी छोटी बातें मुगालता पैदा करती हैं, दिल खट्टे होते हैं, मैंने तो ये कहा था, मैंने तो ये समझा था। और छोटी भी लिखो बड़ी भी लिखो, तो माली मामलात की अहमियत भी है और कर्ज की नज़ाकत भी है। लिखना और गवाह बनाना, ये दो शर्तें हैं। मुफसरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये दो शर्तें पूरी ना की और किसी को कर्ज दे भी दिया तो अजर नहीं मिलेगा। अजर कब मिलेगा? ऐसे लिख दिया करे, 1 महीने बाद क्या फ़ायदा होगा, हर दिन उतना माल सदका करने का अजर मिलेगा, और जब वो मुद्दत गुजर जाएगी तो फिर उससे दुगना रोज खर्च करने का अजर मिलेगा। ये बात हमें हदीस से मालूम होती है। तो तो कितना प्यारा अजर है। हम सिर्फ छोटी छोटी बातों की वजह से इसको छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। और इसके बाद फिर सूरत की आखिरी आयत जामे दुआओं से भरी हुई 286, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अख्ताना, रब्बना वला तख्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अपने दामन पे झांक कर गुनाहों से आलूदा जिस्म को देख कर इंसान तड़प पड़ता है रब के सामने। इस सूरत को पढ़ने के बाद जब इतने अहकामात पता चले, इतने डूज और डोंट्स मालूम हुए, तो एकदम तड़प के दुआ करता है इंसान, ऐ परवरदिगार अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार हम पर ऐसा बोझ न डालना जैसा कि आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। और ऐ परवरदिगार जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं इतना हमारे सर पर मत रखिए। और ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों से दरगुजर कीजिए और हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। और तू ही हमारा मालिक है और हमको काफिरों पर गालिब फरमा। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात थी। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर चुके हो, फिर क्या हुआ? तुम्हारा वास्ता एक ऐसी हस्ती से है जो राह देखता है अपने बंदे का कि पलट आओ, और बंदा जब पलट आता है तो अल्लाह को खुशी बहुत होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे सूरत अल बकरा के इस हिस्से के डूज एंड डोंट्स।